धवला पुस्तक 11वी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं कम्मठजनियवेण वहि समुत्तिन्नये जिनेन मिहुं वेयण महाहियारं विविहियारं परुएमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें यह चौथा खंड इसका नाम है वेदना खंड और उसमें अभी हमारा वेदना क्षेत्र विधान अनुयोग द्वार चल रहा है। 10वीं पुस्तक में मुख्यतः हमने वो द्रव्य विधान देखा था, इसमें क्षेत्र विधान चल रहा है। वेदना का अर्थ है कर्म का जो द्रव्य है, कर्म का जो द्रव्य कर्म परमाणु, तो वो कितना क्षेत्र व्याप्त है उसकी अपेक्षा से बात है यहाँ पर। तो यहाँ तो ये बात हो रही थी कि उत्कृष्ट जो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षेत्र किस, उसका स्वामी कौन है, ये बात अपनी हुई थी। यानी स्वामित्व में जगन्य उत्कृष्ट क्या है उसकी बात हुई थी 15 नंबर के पेज पर। वहां से सूत्र शुरू हुआ था कि जो मत्स्य 1000 योजन की अवगाहना वाला स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट पर स्थित है, वहां से अपनी बात चालू हुई थी। तो बाह्य तट यानी समुद्र से लगते हुए वातवलय नहीं है, उसका किनारा जो कुछ होगा, और उसके लिए वो प्रूफ दे रहे हैं क्योंकि कितने भी समुद्र द्वीप जो है उसकी जो एरिया पूरी बीच वाले समुद्र से कहीं पर भी अगर निकालना है तो कैसे निकालना, तो जो उसकी संख्या है वहां तक के द्वीप समुद्रों की संख्या उसमें 1 मिला दो और उतने बार 2 लिखकर आपस में गुणा करो और उतने लाख कर दो, नहीं उसमें से माइनस तीन करो। पहले मिलाना 1, जैसे हमने 4 द्वीप समुद्र की बात की थी तो उसमें से 5 बार 2-2 लिखकर गुणा किया, 32 में से 3 माइनस किया, उतने लाख ये हमने देखा। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार को लिया, इतनी बार 2 लिखकर आपस में गुणा करना, प्लस 1 करके, हाँ यानी उसका कितना, यानी वो उसका अर्ध छेद हुआ ना, 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले प्लस 1, ये जिसका अर्ध छेद है ऐसी जो संख्या होगी उसमें से 3 माइनस करो उतने लाख हो जाएंगे। तो कहते परंतु वो भी एक राजू जो है उसमें कम है, बस इतना कहना चाहते हैं। यहाँ क्या ये फिर पढ़ते हैं यहाँ से हम
25
सभी सभी
परंतु पूरा टोटल एक राजू है, तिरियक तिरियक जो है एरिया एक राजू है और हम इस केवल द्वीप और समुद्र को देख रहे हैं, वात वाले उनको गिना नहीं हमने। देखो ये पेज में 17 पर देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, ऊपर समाधान क्या बताया था, देखो देखो स्वयंभू रमण समुद्र की एरिया नहीं निकाल रहे, पूरा एक राजो वाली बात हो रही है। ये पूरा 17 नंबर का पेज पढ़ते हैं, देखो शुरुआत से यहाँ सूत्र में क्या बताया, स्वयंभू रमण समुद्र के बाहरी तट पर जो स्थित है, तो सभी आखिर में ये समुद्र ये कहाँ से नक्की हुआ, तो उन्होंने सूत्र में ही बता दिया था स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य द्वीप में ऐसा नहीं कहा, बाह्य तट पर कहा, यानी उसके आगे द्वीप नहीं है ये तो नक्की हुआ। ये शंका समाधान की अपेक्षा से देखा। अब ऊपर से चौथी लाइन, अपनी बाह्य वेदिका पर्यंत स्वयंभू रमण समुद्र है, उसी के बाह्य तट से अभिप्राय समुद्र के पर भूभाग प्रदेश का है, यानी उसका तट यानी उसका किनारा यानी वो भूभाग है, वहां पर स्थित ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब कहते स्वयंभू रमण समुद्र, हाँ उसका किनारा वाली है पर वो द्वीप नहीं है, हाँ पृथ्वी भूभाग है। हाँ अभी आगे कहते कि स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट का अर्थ उसकी अंगभूत बाह्य वेदिका है, वहां स्थित महामत्स्य ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं किंतु वह घटित नहीं होता, यानी वो स्वयंभू रमण समुद्र जो उसका विस्तार है उसी में अंतर्भूत है ऐसा कोई कहते तो वो घटित नहीं होता, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर आगे कहे जाने वाले तनुवात वलय से संलग्न हुआ इस सूत्र के साथ विरोध आता है। अगर हम वो वेदिका स्वयंभू रमण समुद्र के अंतर अगर कहेंगे तो उसने तनुवात वाले को टच किया हुआ है, वो बाहरी तट पर स्थित हुए तो वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अगर वो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर ही वेदिका है तो उसको वात वाले को टच होना, वो पर भूभाग पर है तो उसकी जो अपनी डायमेंशन है उसकी छोड़कर वो वात वाले को टच करेगा, इसलिए वो भूभाग है वहां पर ये सिद्ध होता है। कारण कि स्वयंभू रमण समुद्र की बाह्य वेदिका से तीनों ही वातवले संबद्ध नहीं है, वो उसकी वेदिका से संबद्ध नहीं है परंतु उसका जो कुछ भूभाग थोड़ा होगा वहां पर जितना होगा उससे वो संलग्न है ये कहना चाहते हैं, क्योंकि वैसा होने पर तिर्यक लोक संबंधी विस्तार प्रमाण के एक राजु से हीन होने का प्रसंग आता है, यानी वो पूरा एक राजु नहीं होगा ये कहना चाहते है। वो भी कैसे जाना है तो समाधान, चूंकि जम्बूद्वीप संबंधी 1,00,000 योजन प्रमाण विस्तार की अपेक्षा दुगुने क्रम से गए हुए सब द्वीप समुद्रों के विस्तारों को मिलाने पर जगत श्रेणी का सातवां भाग उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है क्योंकि केवल द्वीप और समुद्रों को गिनेंगे तो उसके परभाग में कुछ भूभाग है वात वलय भी है। हाँ हाँ देखो देखो हाँ देखो क्या कहते हैं, यानी हमने वो द्वीप समुद्रों का विस्तार हमने कैलकुलेट किया तो वो एक राजू नहीं होता है, जगत श्रेणी का अर्थ होता है सात राजू, उसका सातवां भाग है ना एक राजू, वो एग्जैक्ट एक राजू नहीं होता है ये कहना चाहते हैं। इसी से जाना जाता है तीनों वातवलय स्वयंभू रमण समुद्र की बाह्य वेदिका से संबद्ध नहीं है, यानी वहां कुछ भूभाग है। तो कहते वह भी कैसे जाना जाता है, यानी ये जो सातवां भाग एक राजू एग्जैक्ट नहीं होता, द्वीप समुद्र मिलकर एक राजू नहीं होता, ये कैसे जाना, यानी उसके पर भाग में कुछ जमीन है और वहां बाद में वातवलय, ये इतना कहना चाहते हैं। हाँ पूरा ही, क्योंकि पूरा लोक ही एक राजू है तो उसमें सारा स्ट्रक्चर उसके अंदर ही आ गया। तो यह कहते हैं अभी वो द्वीप समुद्रों की एरिया कैसी निकालनी है, तो एक अधिक द्वीप समुद्र संबंधी रूपों का विरलन कर, हमने अगर वो चार द्वीप समुद्र माने तो उसमें हमने प्लस वन किया था, उसका विरलन किया पांच का, दुगुना करके परस्पर गुणित करने पर जो प्राप्त हो, अगर हम चार द्वीप समुद्रों की एरिया निकालनी है तो चार में एक मिलाया पांच हुआ, पांच को एक एक बार लिखा हर एक के ऊपर दो दो लिखा आपस में गुणा किया तो 32 आते हैं 32, उसमें तीन रूपों को कम करके 32 माइनस 3 29 हो जाते हैं, 1,00,000 योजन से गुणित करने पर उतने लाख योजन समझना, यानी 29,00,000 योजन होते हैं, द्वीप समुद्रों द्वारा रोके गए तिर्यक लोक क्षेत्र का आयाम उत्पन्न होता है, अतः इसी से जाना जाता है कि उक्त प्रकार से जगत श्रेणी का सातवां भाग नहीं उत्पन्न होता, ये उसमें से क्लियर हो गया। अब 18 पेज पर आते हैं, वो प्रिंटिंग में 8 हुआ है उसका 18 करना ऊपर। हाँ पेज नंबर
नई बुक में बराबर है।
अब तिर्यक लोक का विस्तार इतने मात्र ही हो सो भी नहीं है, क्योंकि जगत श्रेणी के सातवें भाग में पांच शून्य नहीं पाए जाते और इससे राजू विष्कम्भ हीन भी नहीं है, क्योंकि राजू के अंतर्गत 24 योजन प्रमाण वायुरुद्ध क्षेत्र बाह्य में पाया जाता है। क्या कहते हैं, राजू के अंतर्गत यानी जो सबसे बाहरी क्या स्ट्रक्चर है उसमें तीन वात वाले दोनों ओर से हो गए ना, क्योंकि चहुबाजू से लपेटे हुए हम एक बाजू की डायमेंशन देख रहे हैं, तो अंतिम पोर्शन क्या है, पांच चार और तीन यानी 12 योजन इधर 12 योजन इधर, वो एक राजू के अंदर इंक्लूडेड है, उसको मिलकर एक राजू कहेंगे। दूसरे उतने मात्र क्षेत्र को मिलाने पर पांच शून्य नष्ट भी नहीं होते, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। इसी कारण समस्त द्वीप समुद्र संबंधी विस्तार के बाहर भी कुछ क्षेत्र होना चाहिए, यानी समुद्र के बाहर भी कुछ क्षेत्र है और उसके बाद वातवल्य है, बस इतना ही। अब शंकाकार पूछते हैं, स्वयंभू रमण समुद्र के भीतर स्थित महामत्स्य जलचर जीव उसके बाह्य तट को कैसे प्राप्त होता है, यानी मछली कहाँ होगी, मत्स्य तो समुद्र में होगे, पानी में होगे, वो बाह्य तट पर कैसे आ गए, तट पर तो कोई मछली नहीं होती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूर्व के वैरी किसी देव के प्रयोग से उसका वहां गमन संभव है, किसी देव ने उसको उठाकर वहां फेंक दिया, कोई शत्रु होता है तो वहां तो वेदना से तड़फड़ कर रहा है, अभी मरने वाला है, हिस्सा लेना। अब ये जो महामत्स्य है स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट पर, तो कहते वेयन समुद्घादेन समूहदो, वेदना समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त हुआ है। ये समुद्घात का अर्थ समझते हैं, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकलना, उसको कहते समुद्घात। आत्म प्रदेश निकलते तो उसमें तेजस कारमान हो गए कि नहीं हो गए, होनी चाहिए, नहीं तो केवल उतने आत्म प्रदेश हो उसमें केवल ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ वेदना के लिए नहीं, समुद्घात में कर्म भी उतना फैला है, वेदना समुद्घात में जीव के प्रदेश फैले तो उसके कर्म तेजस शरीर सभी फैला हुआ है। तो कहते वेदना के वश से ये समुद्घात भी कितने प्रकार के मालूम है, सात प्रकार के आपको याद है, हाँ बोलो बोलो, मरणांतिक वेदना, हाँ आप बताएंगे, वैक्रिक, वैक्रिक है, कषाय है, तेजस है, आहारक, ये सात हुए। देखो क्रम से करके ना, वेदना समुद्घात है, पहले कषाय समुद्र, वेदना कषाय दोनों लेना, कषाय है, वेदना है, वैक्रिक है, फिर मारणांतिक है,
तेजस,
आहारक तेजस है, और केवली समुद्घात, ये सात प्रकार के समुद्घात होते हैं। तो उसमें वेदना और कषाय में तिगुणे फैल सकते हैं, ऐसे तिगुणे ऐसे तिगुणे, टोटल 9 टाइम्स हो जाएगा, वैसा हाइट वाइज नहीं फैलते, आड़े फैलते हैं, और इतने वो मैक्सिमम कितने फैलते उसकी है, इतना टोटल फैलना ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। देखो वेदना के वश से जीव कैसा भी जैसा है वैसा उसको फैलेंगे, आड़े फैलेंगे, बस इतना है, बैठा है तो कम आड़े फैलेंगे, यानी हाइट कम हो जाएगी उसकी,
खड़ा है तो ज्यादा,
हाँ वैकृत, देखो वेदना के वश से जीव प्रदेशों के विष्कम्भ और उच्छेद की अपेक्षा तिगुणे प्रमाण में फैलने का नाम वेदना समुद्घात है। अभी यहाँ उच्छेद जो कहा है वो मत्स्य का उच्छेद यानी 500 और ऐसे इस तरह से हो लेना, ऐसी लंबाई उसके हजार है, हाँ तो वो हजार वाली नहीं बढ़ेगी, वो 500 और 250 है, वो तिगुना तिगुना
500 और 250,
हाँ विड्थ और हाइट, हाँ उसमें मूल, देखो मत्स्य में ऐसे लेंथ वाइज नहीं फैलेगा, हमारे ऐसे हाइट हम खड़े हैं तो ऐसा नहीं फैलेगा, हमारे ऐसे हॉरिजॉन्टल आगे पीछे हॉरिजॉन्टल ऐसा फैलेगा, 500 फैलेगा और 250 फैलेगा, हजार वाला नहीं फैलेगा।
500 1500 हो जाएगा और 250 750 हो
जाएगा।
अभी उसको लंबाई कहेंगे नहीं, पर लंबाई कहेंगे, लंबाई वाइज नहीं बढ़ेगा। परंतु सबके जीव प्रदेश वेदना के वश से तिगुणे ही फैलते हैं, ऐसा नियम नहीं है ना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताते हैं तिगुणा, किंतु तरतम रूप से स्थित, तरतम यानी हीनाधिक रूप से स्थित वेदना के वश से अपने विष्कम्भ की अपेक्षा एक दो प्रदेश आदि कौन से भी वृद्धि होती हो सकता है। एक प्रदेश कितना सूक्ष्म होगा, नहीं के बराबर, तो कहते कि एक प्रदेश की भी वृद्धि हो सकती है, दो प्रदेश की मैक्सिमम तीन गुणे। परंतु उन वेदना समुद्घातों का यहाँ ग्रहण नहीं किया, जो हीन होते उसकी बात यहाँ नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल की बात यहाँ, क्योंकि हमको उत्कृष्ट क्षेत्र गिनना है, इसलिए क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट क्षेत्र का अधिकार है। शंका, महामत्स्य को ही वेदना समुद्घात को क्यों प्राप्त कराया है? क्योंकि हमें ये वो तो अधिक से अधिक क्षेत्र हमको कैलकुलेट करना है। महामत्स्य एक तो उसकी सर्वोत्कृष्ट अवगाहना वाला वो लिया है, एक बात, और वो सातवें नरक में जा सकता है, इसलिए उसकी भी बात है। तो महामत्स्य को ही क्यों प्राप्त कराया? समाधान, क्योंकि एक तो उसकी अवगाहना बहुत अधिक है, दूसरे यानी दूसरी बात, जलचर जीव को स्थल में रखने पर, स्थल यानी वो तो भूमि पर रखने पर, जल थल ऐसा कहते ना, यानी भूमि में तो तड़पड़ाता है ना, वो तो उष्णता के कारण अंगों के संतप्त होने से बहुत पाप कर्मों के संचय को प्राप्त हुए उसके महावेदना की उत्पत्ति देखी जाती है। इवन मारणांतिक में ऐसा है, उस दिशा में उसका थोड़ा भी प्रदेश बाहर निकल सकते, उसको मारणांतिक कहने में, जरूरी नहीं टोटल वहां तक फैलेंगे, वो बात कोई नहीं लेता, वो वहां टच करके आ गया, देख के आ गया, ऐसी बात होती है। वो मारणांतिक के लिए क्या है कि वेदना कभी भी हो सकती है, मैं हो वेदना समुद्र कभी भी हो सकता है, यहाँ वेदना के साथ मारणांतिक किया, वेदना करके मारणांतिक करने वाला जीव यहाँ लिया है। हाँ, मरण के समय में भी उसको वेदना है, वैसा जीव यहाँ लिया है, परंतु वेदना और कषाय समुदाय कभी भी हो सकते हैं जीवन में, वेदना होगी या कषाय, मगर वेदना समुदघात होगा या कषाय समुदघात
होगा,
एक साथ हो गए तो भी उतनी एरिया है ना उसके, अभी उसको कषाय वाला वेदना के काल में कषाय भी हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, परंतु उसको नाम को किसका देंगे हम, क्योंकि उतने ही फैले है ना। देखो, एक तो उसकी अवगाहना बहुत है, और दूसरे, ये दूसरे नहीं, दूसरे दू दीर्घ चाहिए, जलचर जीव को स्थल में रखने पर उष्णता के कारण अंगों के संतप्त होने से बहुत पाप कर्मों के संचय को प्राप्त हुए, पाप कर्मों का संचय हुआ यानी उसके संकलेश परिणाम हुए ना अधिक से, तो वहां तो तीव्र बंध भी हो सकता है उसके, और उसके महावेदना की उत्पत्ति देखी जाती है। अब आगे की कंडीशन, पहले पहले वो महामत्स्य चाहिए, वो बड़ी अवगाहना वाला और समुद्र के बाहरी तट पर स्थित है और वेदना समुद्घात को प्राप्त हुआ है। अब दसवां सूत्र, ये काय नहीं चाहिए, काग चाहिए, ग ऊपर सूत्र में, काग लेसियाए लग्गो, क्योंकि काय लेसा नहीं होती, काग होनी चाहिए, शायद ग और यह दोनों चलते है, पता नहीं है, क्योंकि दूसरे लाइन में यहाँ देखो काग लेसियो नाम, हाँ दो जगह काग और फिर वहां लिख के रखा है मैंने ये और ग करके, क्योंकि कहीं के प्राकृत में ग होना चाहिए, ग चाहिए, तो कहते काग लेसियाए लग्गो, जो तनुवात वलय से स्पृष्ट है, लग्गो ने लगा हुआ है, ने टच किया उसने, और वो कागल ऐसी है कह दिया, और उसका ट्रांसलेशन तनुवात वाले के है ना। अभी उसका कारण बताएंगे। काकलेशा का अर्थ तीसरा वात वलय है। ऊपर किया था हमने लास्ट टाइम, काग किया था, और ऊपर भी प्राकृत में भी देखो ना, काग बन्नता दो काक ही कहते हैं हिंदी में। हमारे यहाँ काक लिखा है, आपके इसमें काक लिखा है। शंका, उसकी यह संज्ञा कैसे है, यानी तनुवात वलय के लिए काकलेशा ऐसा क्यों कहा, उसका समाधान। तनुवात वलय का काक के समान वर्ण होने से उसकी काकलेशा संज्ञा है। यहाँ अंध काकलेशा का ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी काला स्याह काक वर्ण, काले शाह जैसा, जैसे डीप ब्लैक नहीं समझना उसको। वो हमने तीन वात वाले उनके कलर आते हैं ना, घनवात, घनवात वाले और तनुवात वाले, वो मूंगा मूंगा का कुछ ऐसा थोड़ा सा,
हाँ, एक
तीन तीन कलर आते हैं उसके अंदर। नहीं, उसको ब्लैकिश आता है, डीप काला नहीं होता है उसका, थोड़ा ब्लैकिश टीन जाता है बस। ये येलो ही नहीं तो मेरे ख्याल से मूंगा का ऐसा कुछ कलर है, ब्लैकिश ब्लैकिश ग्रीन ऐसा होगा, नहीं ब्लैकिश ग्रीन होगा थोड़ा सा। नहीं, उसके कलर भी शास्त्र में लिखे हुए हैं। रंग देने की बात नहीं है, हमने तो येलो रेड और ब्लू समझाने के लिए बताया है, परंतु उसमें भी तीन आते हैं ऐसे कलर। क्योंकि उसमें अंधत्व अर्थात काला स्याह वर्ण नहीं पाया जाता, इसको हम काला कहते हैं ऐसा, वो काला नहीं है एक्चुअली, फिर भी उसको काक कहने में आता है। शंका, लोकनाली के भीतर स्थित महामत्स्य, लोकनाली समझते, इसको त्रस नाली कहते हैं, क्योंकि त्रस जो त्रस नाली के अंदर है। लोक विस्तार अनुसार लोकनाली के आगे संख्यात योजन जाकर स्थित तृतीय वात वलय से कैसे संसक्त होता है। लोकनाली के भीतर स्थित महामत्स्य, ये लोकनाली यानी त्रस नाली, तो लोक विस्तार के अनुसार लोक नाली के आगे संख्यात योजन जाकर स्थित तृतीय वात वलय से कैसे संसक्त होता है, यानी उन्होंने लोक नाली के अंदर ये तृतीय वात वलय को इंक्लूड नहीं किया है। लोक नाली एक राजू बा एक राजू तो है ही है ना। नहीं, हाँ, परंतु एक सेकंड, यहाँ के ये ऐसा एक राज्य है और आगे पीछे देखेंगे तो सात राज्य है, तो ऐसा सात राज्य अगर लेते हैं तो नहीं होगा, और अगर ऐसा राज्य लेते हैं वही है ना कुछ। यानी उसको लोक नाली के यानी वात वलय को लोक त्रस नाली में नहीं लिया, क्योंकि वो तो केवल वात वलय है ना, वहां पर एक इंद्रिय जीव हो गए, सूक्ष्म एक इंद्रिय, त्रस नाली उसको छोड़कर अंदर होगी, यही कहना चाहते होगे। यानी वो सात योजन, पांच योजन और तीन योजन, वो लास्ट
यानी
बारह और चौबीस योजन का फर्क पड़ेगा, ये कहना चाहते, ऐसा उनको कहना है। फिर से पढ़ते हैं कि लोक नाली के भीतर स्थित महामत्स्य लोक विस्तार अनुसार लोक नाली के आगे संख्यात योजन जाकर, संख्यात योजन है ना, सात पांच वो संख्यात योजन हो गए, स्थित तृतीय वात वलय से कैसे संसक्त होता है, क्योंकि उसमें तो कोई त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको त्रस नाली नहीं कहेंगे। यह सत्य समाधान, यह सत्य है महामत्स्य का तृतीय वातवलय से स्पर्श नहीं होता, किंतु यह सप्तमी विभक्ति सामीप्य अर्थ में है। क्या कहना चाहते हैं? भले वो वेदना में है, मर रहा है, कुछ भी है, परंतु वो वातवलय के अंदर नहीं जाएगा, तृतीय वातवलय को कैसे टच करेगा, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि उसके अंदर सात और पांच, इतने तो दो, सात और पांच सात नहीं नहीं सात पांच है, पांच चार, पांच चार तीन है वहां, तो पांच और चार नौ योजन का तो डिफरेंस पड़ेगा ही।
तो क्या वेदिका के अंत में होगा तो उसका समुद्र का तो का तो उसके प्रदेश वातवलय में नहीं जाएंगे?
अगर कौन सा समुद्र करेगा, मारणांतिक में जा सकता है,
नहीं ये वेदना समुद्र,
वेदना में नहीं जाएगा,
वातवलय में नहीं जाएगा,
नहीं जाएगा। मारणांतिक करके वातवलय में उत्पन्न होने वाला होता तो जाते,
वो तो वहाँ पे उत्पन्न होने की अपेक्षा,
उत्पन्न होने की अपेक्षा ही मारणांतिक समुद्र में, जैसे जैसे यहाँ का कोई जीव है और वो किसी कोने में सूक्ष्म एकेंद्रीय होने वाला है, तो वहाँ तो त्रसनाली के बाहर उसके प्रदेश फैलेंगे, अदरवाइज नहीं। महामत्स्य त्रस में, त्रस का त्रस में जैसे नरक में जाने वाला है, तो बात वाले को क्यों टच करेगा? वही वही कह रहे, स्पर्श किया का अर्थ अभी बता रहे, पहले प्रश्न उठाया उन्होंने, नहीं जस्ट टच करने, तनुवात वाला आउटर है, जस्ट टच करने के लिए भी पांच और चार नौ योजन आगे जाना पड़ेगा, घनवात घनोदधिवात और तनुवात, हाँ घनवात को करे, यानी तनुवात को बोला है ना, हाँ अभी उसका उत्तर बता रहे। देखो समाधान, यह सत्य है कि महामत्स्य का तृतीय वात वलय से स्पर्श नहीं होता, क्या कहा, किंतु यह सप्तमी विभक्ति, सप्तमी बताई ना कि कांगल एसिया ए लगो, कहा सामीप्य अर्थ में है, वो समीपता बता रहे, क्योंकि इसने जो इतना लंबा चौड़ा है वो स्वयं की उसकी अवगाहना इतनी बड़ी है, तो उसके लिए नौ योजन नहीं के बराबर है। यदि कहा जाए कि सामीप्य अर्थ में सप्तमी विभक्ति असिद्ध है, सो भी ठीक नहीं है, यानी अन्यत्र भी उसका यूज होता है, अभी ये तो व्याकरण का है, सप्तमी यानी में ऐसा कहते हैं, क्योंकि गंगा में घोष वसता है यानी ग्वाल वसती, यहाँ सामीप्य अर्थ में सप्तमी विभक्ति पाई जाती है, यानी वो गंगा के पास रहता है ग्वाला, तो गंगा में रहता है, इसे कहने की पद्धति है। इसलिए कापोत्लेशा से स्पृष्ट प्रदेश भी कापोत्लेशा रूप से ग्रहण किया गया है।
ये नहीं समझा, कापोत्लेशा से स्पृष्ट
यानी वो जो उसके प्रदेश जो ने वो वातवले से स्पृष्ट प्रदेश को भी कापोत्लेशा कह दिया, स्पृष्ट स्पृष्ट यानी स्पर्शा हुआ, उस कापोत्लेशा से जहां तक संसर्गित होता है वहां तक वेदना समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त हुआ, यह उसका अभिप्राय है, यानी जो भू प्रदेश उसको उसके संसर्ग में है उसको भी वो लेशा वाला कह दिया है।
सातवें नरक का तो कापोत लेशा में चल
रहा है। अरे बाबा, सातवें नरक में अभी कहां गया है, अभी तो वो वेदना कर रहा है, अभी मारणांतिक भी नहीं किया उसने।
अच्छा सॉरी, ये वेदना सब,
अब वो तीरियन चाहिए, अभी नरक तक गया नहीं उसका प्रदेश। भावार्थ, पूर्व के वैरी किसी देव के द्वारा महामत्स्य स्वयं भ्रमण समुद्र की बाह्य वेदिका के बाहर भाग में लोक नाली के समीप पटका गया, यानी लोक नाली के आउटर तक वहां गया, जहां तक तरस नो स्वाइल के बाहर वातवले है, वातवले में जा ही नहीं सकता, त्रस है वो, इसलिए वहां तीव्र वेदना के वश वेदना समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त होकर लोक नाली के बाह्य भाग पर्यंत, बाह्य भाग है वो, वह संसक्त होता है, यह अभिप्राय, संसक्त में वहां टच किया है उसने,
तो वेदना समुद्र करके वो आत्मल भी जा सकता है,
कहां कहां लिखा है
संसक्त होता है,
भाग पर्यंत रहता है, लोकनाली का बाह्य भाग आउटर एरिया वहां तक गया है, वो वातवलय में नहीं गया है। अब 20 पेज पर आते हैं। अभी एक एक कंडीशन बताते हैं एक एक सूत्र में। अभी तक तो वो लोकनाली के बाह्य भाग में स्थित है, वो उसकी बात बताइए। पुनरवि मारणंत्य समुघादेन समूह दो तिन्नी विग्रह कंडयाणी कादून। फिर भी जो तीन विग्रह करके मारणांतिक समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त हुआ है,
ये तो दो ही विग्रह होगा ना लोकनाली में,
दो ही विग्रह यानी दो बार मुड़ता है।
तो यहाँ पे तीन विग्रह क्यों बताया?
अभी बताएंगे। महामत्स्य महामत्स्य लोकनाली की वायव्य दिशा में, वायव्य समझते हैं?
दिशा की दिशा
आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य भारत की बताएंगे। वायव्य कहाँ है भारत का? भारत के वायव्य में कौन है? वो पाकिस्तान है अभी।
नहीं, नीचे के ओर होगा ना।
आग्नेय यहाँ आग्नेय ने अपने मद्रास वगैरह वो आग्नेय दिशा में, नैऋत्य ने यहाँ केरल वाला।
अच्छा वायव्य ऊपर,
वायव्य वहाँ वायव्य सरहद है ना, वो अफगान वगैरह वो वायव्य दिशा में इसी। हाँ वो पूर्व पश्चिम अपोजिट बताते वैसे है नहीं, आग्नेय यानी राइट साइड नीचे यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये आग्नेय है।
अग्नि नैऋत्य वायव्य
आग्नेय साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट हुआ नैऋत्य और वायव्य हुआ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट हो गया वायव्य ईशान्य ईशान्य मेघा। हाँ वो वायव्य सरहद कहते ना, वो वायव्य सरहद है ना, वो अफगान वगैरह ये बॉर्डर है अपने पाकिस्तान, वो वायव्य सरहद पर है, उसको अपने वायव्य सरहद कहते हैं। हाँ ईशान्य ने मेघालय वगैरह त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूर्व के बीच में। देखो उजव्या हाताला खाली आग्नेय, डाव्या हाताला खाली नैऋत्य, डाव्या हाताला वर
वायव्य,
हाँ वायव्य और ईशान्य नॉर्थ, कौन सा? हाँ नैऋत्य साउथ वेस्ट। हाँ ना, हाँ ना। हाँ वो तो सब उसके
फिर गया ना, पर
म्यांमार क्या है ना वो म्यांमार। हाँ देखो अभी हम पढ़ते हैं। महामत्स्य लोक नाली की वायव्य दिशा में पूर्व के वैरी देव के संबंध से दक्षिण उत्तर आयाम स्वरूप से गिरा, यानी दक्षिण उत्तर ऐसा गिरा, यानी अभी कैसा है अभी? अरे हमारी पार्टी किधर गई? उधर उसके ऊपर होगी क्या? वही बता रही हूँ मैं, ऊपर नहीं वहाँ गांव जाते समय ऊपर कहीं रखी होगी, तो पुस्तक के नीचे है क्या? पुस्तक के नीचे सबसे नीचे देखो क्या है, पुस्तक के नीचे ये त्रस नाली ऐसी है और ये स्वयंभू रमण समुद्र। अभी उसके बाजू में कोई थोड़ी एरिया जाती होगी, एक राजू के सामने वो कुछ नहीं के बराबर है,
वो वातवल है ना साइड की।
नहीं ये उसके बॉर्डर है और ये भू प्रदेश है और यहाँ ये वातवल है। अभी कैसे दक्षिणोत्तर ऐसा है ना ये सब, और पूर्व पश्चिम ऐसा है, क्योंकि ऐसा तो सात राज्य है उसके बीच वाली है ये, और इस तरह से देखेंगे तो ये पूर्व पश्चिम है, एक राज्य है। अब यहाँ ये बाहरी मातमले को छोड़कर यहाँ ऐसा लंबा फैला, वायव्य दिशा नहीं यहाँ पर, यानी यहाँ ऐसा किसी ने उसको पटक दिया यहाँ पर, अभी इतना लंबा नहीं आएगा, हजार योजन यानी इतना, क्योंकि ये आधा राज्य होता है ना, ये हजार योजन वाला इस कोने में पड़ा है, यहाँ से शुरुआत करना। देखो स्थंडिल क्षेत्र इसी को, ये जो है ना चार चतुष्कोण, उसको स्थंडिल भूमि के महामत्स्य लोक नाली की वायव्य दिशा में पूर्व के वैरी देव के संबंध से, यानी किसी देव ने उठाकर फेंका, दक्षिण उत्तर आयाम स्वरूप से गिरे, उसका आयाम ऐसा है, ये उसका आयाम है लंबाई हजार योजन इस तरह से, दक्षिण उत्तर, ये पूर्व पश्चिम है और ये दक्षिण उत्तर है, यानी उसकी ऐसी लंबाई पड़ी है ना, ये उत्तर है दक्षिण है, ये पूर्व है पश्चिम है, ये पूर्व ये पश्चिम। अब देखो आगे, वहां वह मारणांतिक समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त हुआ, यानी वो पड़ा है और वेदना है तो वो तिगुणा ऑलरेडी हो गया है, लंबाई तो उतनी की उतनी है, ऐसा तिगुणा उसका फैल गया है, अभी उसने मारणांतिक समुद्घात किया है। तो वेदना समुद्घात के साथ मारणांतिक समुद्घात करने वाले उक्त महामत्स्य ने तीन विग्रह कांडक किए, कांडक तीन किए, मोड़ तीन नहीं किए।
कांडक और मोड़ में क्या फर्क?
देखो कांडक है ने मोड़ में क्या फर्क है, देखो कोई यहाँ से मरकर यहाँ यानी यहाँ जाने वाला है तो उसने यहाँ एक मोड़ लिया, यहाँ एक मोड़ लिया और आगे पीछे ने वो दक्षिण उत्तर आगे गया,
कांडक
तो एक कांडक दूसरा कांडक तीसरा कांडक, एक यानी मूल शरीर से पहले मोड़ तक फैला हुआ पहला कांडक, पहले मोड़ से दूसरे कांडक तर दूसरे मोड़ तक दूसरा कांडक
और तीसरा कांडक
और उससे वहाँ जहाँ उत्पन्न होने वाला है वहाँ तक वो तीसरा कांडक। मोड़ तीन तो केवल सूक्ष्म को ही होते हैं, त्रस में से त्रस में जाने वाले के लिए दो ही मोड़ हो गए, यहाँ विग्रह ने विग्रह कांडक का अर्थ है इसलिए वो स्पष्टीकरण में बता रहे। देखो तीन विग्रह कांडक किए है ना, विग्रह का अर्थ वक्रता है, उससे तीन कांडक किए वे इस प्रकार से लोक नाली की वायव्य दिशा से बाण के समान यानी सीधी लाइन में रुजु गति से साधिक अर्धराजु मात्र दक्षिण दिशा में आया। अभी देखो ये यहाँ पड़ा था, अभी ये यहाँ तक आधा राजु हुआ था और साधिक अर्धराजु जो कुछ यथायोग्य साधिक में इस बाजू यहाँ पर आ गए, यानी यहाँ तक वो सीधी यहाँ तक आ गया, दक्षिण दक्षिण की ओर आया, साधिक अर्धराजु यहाँ तक अर्धराजु है, साधिक अर्धराजु ऐसा ऐसा है ना, हाँ पहला कांडक पहले मोड़ तक गया है वो, पहला मोड़ कहाँ जाके ले गया, साधिक अर्ध आधे से भी ज्यादा, तो यहाँ कहते कि साधिक अर्ध राजु मात्र दक्षिण दिशा में आया, वह एक कांडक हुआ, यानी उसका जिसको हम एक दंड कहते हैं, तीन दंड होते हैं ना, एक कांडक हुआ, फिर वहां से मुड़कर बाण जैसे सीधी गति से एक राजु मात्र पूर्व दिशा में आया। देखो यहाँ से इस तरह से एक राजु यहाँ पर आ गया, ये पहला कांडक यानी दंड, अरे हमारा अरबी समुद्र इधर है ना, मुंबई वायु पश्चिम में है, मुंबई पश्चिम में है और मद्रास पूर्व में है,
जापान पूर्व में है।
नहीं
ये पूर्व है,
ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, हमने ऑर्डर कह रहे हैं ना, ईस्ट एंड साउथ, साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है, हमने इसको नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट कहेंगे,
नॉर्थ वेस्ट कहा था
और नॉर्थ ईस्ट
कहा था है ना, इसी को हम पूर्व कह रहे हैं। तो यहाँ से पूर्व में आया, पहले वायव्य में था वो मोर देन हाफ राजू दक्षिण में आया, वहां से एक राजु करीबन पूर्व में गया, वह द्वितीय कांडक हुआ है। फिर वहां से मुड़कर नीचे छह राजु मात्र मार्ग में रुजुगति से गया। अभी यहाँ नीचे जाना है, अभी ऐसा है ना, अभी नीचे ऐसा जाएगा, पहले ऐसा आया फिर ऐसा गया और फिर ये नीचे इस तरह से आया। अभी एक ही पार्टी पर कैसे बताएंगे। हाँ तो उसको हम ऐसा थ्री डायमेंशनल या ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ गया और यहाँ से नीचे की तरफ गया। इस हाँ सातवें नरक में पहुंचा, इसलिए छह राजु नीचे गया, तृतीय कांडक हुआ। इस प्रकार तीन कांडकों को करके मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुआ। मारणांतिक समुद्घात अंतर्मूल तक तक ऐसे फैले रहते हैं प्रदेश, इसको मारणांतिक समुद्घात।
सातवें नरक का बिल कितने हैं? पांच है,
पांच है ना,
पांच है तो वो अंत तक है नहीं, असंख्यात योजनों का वहाँ पे अंतर पड़ता है ना। प्रत्येक बिल और राजू के बीच में जो हम लोग त्रसनाली देखते हैं उसमें असंख्यात योजनों का अंतर है।
पांच बिल है तो बड़े बड़े हैं ना वो,
नहीं बड़े हैं पर वहाँ पे जो त्रसनाली का जो अंत है उससे असंख्यात योजन
करीबन उसमें समझना यथा योग्य वहाँ का है वो।
अच्छा तो एक राजू पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा छोड़ के
समझने के लिए एक राजू कहेंगे हम उसको, उसके अंदर बिल के आउटर एज में उत्पन्न होगा और क्या है।
हाँ एकदम।
आप कहेंगे नीचे एग्जैक्ट कहाँ पहुँचा वो छह राजू,
नहीं वो
तो उसकी तो एरिया भी वो काल के पर
ऐसे तो ये तलबु
तो
भी हजार ही रूप पर
है। अब ये पूछ रहे हैं कि चार कांडकों को क्यों नहीं कराया, इन्हें तीन मोड़ क्यों नहीं लिए, ये उनका प्रश्न है। तो कोई भी क्यूबिकल एरिया हो तो कहीं से भी कहीं जाना है तो दो मोड़ ही लगेंगे, तीन मोड़ लगते नहीं कहीं से भी कहीं पर। इफ इट इज अ क्यूबिकल एरिया, त्रस में से त्रस में जाने वाले को दो ही मोड़ लगेंगे। इवन एकेंद्रीय को त्रस में आने के लिए भी
दो ही मोड़,
हाँ केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बाहरी और त्रस नाली के बाहर वाले जो है उसमें वो लगता है। देखो उसका समाधान नहीं, क्योंकि त्रसों में दो विग्रहों को छोड़कर तीन विग्रह नहीं होते। यहाँ विग्रह ने मोड़ दो मोड़ ही हो सकते हैं। तो कहते वह कैसे ज्ञात होता है, वो इसी सूत्र से ज्ञात होता है, नहीं तो वहां और एक मोड़ लेते ना, ये कहना चाहते हैं। यहाँ विग्रह का अर्थ होते मोड़ और वहां तीन विग्रह ने तीन विग्रह कांडक। अब ये तो समुद्घात को किया उसने, उसके बाद में क्या करता है उसके बाद पढ़ेंगे अभी। से काले यानी अनंतर समय में, से काले का अर्थ होता है अनंतर समय में, अधो सत्तमाय पुढ़विये नेरयेसु उपज्जिहिदिति तस् नानावर्णीय वेयना केत्तदो उक्कस्सा। अनंतर समय में वह सातवी पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होगा, यानी अभी वो जलचर ही है, मारणातिक समुद्घात के काल में वो जलचर है। नेक्स्ट समय में क्या होगा, वो नारकी कहलाएगा, भले उसके वो फैले हुए दंड पड़े रहेंगे अभी। नेक्स्ट समय में ये यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ तो उसको पहुंच गया है, वहाँ उसने नारकी कहलाएगा अभी, परंतु अभी
प्रदेश
उसके
कम होते जाएंगे।
प्रदेश ऐसे भी फैले ऐसे भी फैले
ऐसे में भी वो अभी
नहीं, यहाँ ये यह मरण हो गया अभी, वो अभी नारकी कहलाएगा। पहले समय में क्या हुआ,
पहले एक मोड़ का
यहाँ तक
कांडक
प्रदेश वहाँ फैल गए, वहाँ जो उसका शरीर धारण करना वगैरह वो चालू हो गया उसका, नहीं शरीर उसके बाद में धारण करेगा ना वो तो,
हाँ अब तक मैं शरीर पीछे धारण,
हाँ बाद में तो यहाँ तक आए है, ये दो दंड भी फैले है, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, यानी जो फैले हुए ना पहले मूल शरीर से समेट लेता है उसको उपपाद दंड कहते हैं उसका, इसलिए ऐसे फैले रहते इसलिए उपपाद दंड कहते हैं उसको। यानी उसकी अवगाहना मैक्सिमम है, वो तब नारकी नहीं है, वो तिर्यंच है। नेक्स्ट समय में नारकी होगा, यानी अभी नहीं हुआ है, अभी वो जलचर का अंतिम समय है, जलचर की आयु का वो अंतिम समय है, क्योंकि अंतर्मूर्त पहले से प्रदेश फैले रहते हैं। तो कहते कि अनंतर समय में वह सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होगा, अतः उसके ज्ञानावरणीय वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। यहाँ जो फैला हुआ क्षेत्र उसको कैलकुलेट करना है हमको, वो मैक्सिमम है। एक वो जलचर है, हाँ, अंतिम समय वाला जलचर है। किसको सम्यक दृष्टि, वो थोड़ी जाएंगे साथ में, वो पांचवे गुणस्थान हो सकता है कुछ भी। देखो देखो, जैसे अभी वहां से नरक में भी जा सकता है, कोई स्वर्ग में भी जा सकता है। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि रहा सातवें में गया, और वो समय दर्शन प्राप्त करके तो पांचवा गुणस्थान करके सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है। तिर्यंच वो आता है ना, असंख्यात समय दृष्टि वहां जलचरों में भी, महामत्स्य जो समूर्छन जीव है। शंकाकार पूछते हैं, सातवीं पृथ्वी को छोड़कर नीचे सात राजु मात्र अधवान जाकर निगोद जीवों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया, ये आपका प्रश्न था। मैंने आपको बोला था ना, थोड़ी शांति रखेंगे तो मिलेगा। ये छह राजु के बदले सात राजु भेजो ना, हमारा क्या जाता है इसका। हाँ, हाँ। या और भी मोड़ लेकर पीछे भेज दो, सूक्ष्म में भेज दो, यही आपका प्रश्न था ना। हाँ, समाधान नहीं, क्योंकि निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले जीव के अतिशय तीव्र वेदना का अभाव होने से विवक्षित शरीर से तिगुणा वेदना समुद्घात संभव नहीं है। देखो कितने केवल ज्ञाने में क्या क्या आता है, वो एक केंद्रीय में तो नारकी में सातवें नरक में जाने वाले के संकलेश अधिक है, ज्यादा है, वैसा उसमें जाने वाले की इतना तीव्र नहीं है,
नहीं
तो उसके इतना तिगुणा भी नहीं होगा। समुद्र संस्थान है उसका, संस्थान नहीं, वज्रसंहार सहनन सहनन है, संस्थान कोई भी हो सकता है, उस संस्थान के लिए कोई रुकावट नहीं है। शंका, यदि ऐसा है तो वेदना समुद्घात में पूर्वोक्त विष्कम्भ उच्छेद से जिस प्रकार दुगुणा विष्कम्भ व उच्छेद होता है, वैसा करके निगोद जीवों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया। तो कहते कि तो ठीक है, ये जो वेदना तिगुणा हो सकती है ना, हमने जो प्रमाण लिया था उससे तिगुणा होता है। तो कहते पहले विष्कम्भ और उससे दुगुणा कर दो, और उसका तिगुणा मत करो, भले थोड़ा कम करो तो इसके एरिया ज्यादा हो जाएगी। समाधान नहीं, क्योंकि उसके वृद्धिंगत क्षेत्र की अपेक्षा हानि को प्राप्त क्षेत्र साधिक आठ गुना पाया जाता है। इन्हें हानि क्यों होती है, क्योंकि उसकी एरिया कम हो जाएगी।
हाँ।
और भले यहाँ एक राजू ऐसा बढ़ाया, परंतु उसकी वृद्धि इतनी एरिया में वृद्धि उसकी कम हो जाएगी। देखो आठ गुना एग्जैक्ट,
हानि का प्रमाण,
हानि को प्राप्त क्षेत्र साधिक आठ गुना है, यानी हानि साधिक आठ गुना हो जाती है। यद्यपि पश्चिम दिशा से एक राजू मात्र पूर्व दिशा में जाकर, फिर नीचे सात राजू अध्वान जाकर, ये सूक्ष्म में जाने की अपेक्षा बता रहे हैं। यानी पहले डायरेक्ट पूर्व की ओर भेजा, नीचे सात राजू अध्वान जाकर, फिर दक्षिण से साढ़े तीन राजू जाकर सूक्ष्म निगोद जीवों में उत्पन्न होता है, तो भी पूर्व के क्षेत्र से इस क्षेत्र विशेषहीन ही है, क्योंकि इसमें विष्कम्भ और उससे तिगुणे नहीं। ये जो क्लियर करना चाहते हैं, पहले ऐसा भेजा उसको, अभी हाँ ये जो ऐसा ये आगे पीछे भी साढ़े तीन पूरे इतने तीन तीन राजू इधर भी देखिए ना, ये एक राजू है और ये तीन तीन राजू यहाँ यहाँ भूमि है और यहाँ उत्पन्न कराना है उसको लॉन्गेस्ट। तो पहले ये यहाँ से ऐसा मोड़ नहीं लिया, यहाँ आया नीचे गया और यहाँ मोड़ लेकर और इधर आ गया दक्षिण की ओर, तीसरा मोड़ लेके यानी चार विग्रह करके जिसको कहेंगे चार कांडक किए और इधर आ गया। तो भी कहते हैं कि उसका इसको चार नहीं करने, इसको तीन ही करना है, तीन ही मोड़ लेना, दो ही मोड़ लेगा ये त्रस है ना, वो एक इंद्री जाते समय भी दो ही मोड़ लेगा।
हाँ।
तो उसने क्या किया है
तीसरा मोड़ जो है उसका तीसरा,
तो डायरेक्ट यहाँ जो पड़ा था पूर्व में गया है, वहां से नीचे गया है और फिर यहाँ मुड़कर आया है दक्षिणोत्तर
कोने में आया।
फिर भी उसकी एरिया ज्यादा नहीं होती है कह रहे, क्योंकि उसका विषकंब इतना नहीं है। हाँ हाँ सूक्ष्म में भी जा सकते, कहीं पर भी जा सकते।
मेरे वो क्या पूछा था कि तीन उत्कृष्ट सनन है वो एक वो सूक्ष्म में उत्पन्न हो सकते हैं?
बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। सहनन वाला कहीं नहीं जाता ऐसा थोड़ी नियम है,
वो मेरी को क्लेरिटी।
हाँ, कहीं पर भी ये महामत्स्य से सूक्ष्म में जाएगा कि नहीं जाएगा, मनुष्य भी सब जगह जाते थे।
हाँ,
ये हो गया ना अभी नीचे नीचे की शंका, सूक्ष्म निगो जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य का विषकंब और उच्छेद तिगुणा नहीं होता किंतु दुगुणा अथवा विशेष अधिक होता है, यह कैसे जाना जाता है। समाधान, सूत्र से ही यह क्लियर हो रहा है कि इसी का विषकंब एरिया ज्यादा है, कि नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में वह अनंतर काल में उत्पन्न होगा इस सूत्र से जाना जाता है। सत्कर्म प्रावृत में उसे निगोद जीवों में उत्पन्न कराया है क्योंकि नारकियों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के समान सूक्ष्म निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाला महामत्स्य भी विवक्षित शरीर की अपेक्षा तिगुणे बाहल्य से मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त होता है, परंतु वह योग्य नहीं है। मैंने कहीं पर उसको स्वीकार किया है आप जैसे कहते वैसा, परंतु और इसे एक नक्की हुआ ना वो निगोद में जा सकता है, परंतु वो तिगुणा कहते हैं वो बराबर नहीं ये कहते हैं। हाँ, क्योंकि अत्यधिक असाता का अनुभव करने वाले सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य की वेदना और कषाय की अपेक्षा सूक्ष्म निगो जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य की वेदना और कषाय सदृश नहीं हो सकती, यानी सातवें में जाने वाले भी जो तीव्र कृष्ण लेशा के प्रभाव वह अति संक्लेश में वहां चले जाएगा, इस कारण यही अर्थ प्रधान है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। देखो लोक नाली के अंत में सातवीं पृथ्वी का श्रेणीबद्ध है आपका प्रश्न का उत्तर, इस सूत्र से जाना जाता है क्योंकि इसके बिना तीन विग्रहों का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं आपने कहा ना वो नीचे जाता है तो वहाँ पांच ही बिल है, पांच बिल है ने एक जिसको इंद्र कहते हैं, सेंटर के बिल को इंद्र कहते हैं और बाजू के चार ही रहेंगे उसको श्रेणीबद्ध कहेंगे, एक पूर्व में एक पश्चिम में दक्षिण में उत्तर में, तो वो आउटर लोक लाने के अंत तक फैला हुआ है, यानी भले इंद्रक में और उसमें डिफरेंस यानी बीच में गैप होगी बहुत, वो श्रेणीबद्ध लोक नहीं तो वहां तो श्रेणीबद्ध के अंतर आने के लिए फिर और उसको एक मोड़ लेना पड़ता, या इन्होंने कहा वैसे पूरा राजू तक नहीं जा सकता क्योंकि वहां जहां उत्पन्न होना है वो तो राजू के अंदर है, अगर वो श्रेणीबद्ध बहुत सेंटर में होता तो बीच में से नीचे जाना पड़ता, पूरा राजू तक जाके उसको नीचे ले गया है, इसी से सिद्ध होता है श्रेणीबद्ध वहाँ टच कर रहा है
लोकनाली के अंत तक है।
हाँ, ये कहना चाहते हैं यानी सूत्र के द्वारा ही वो टच हो, यानी नक्की हो गया। शंका, अनंतर काल में उत्पन्न होगा यह किस लिए कहते हैं? समाधान, नहीं क्योंकि नारकियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में प्रथम दंड का उपसंहार हो जाने से उसका उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं बनता। देखो प्रथम दंड का उपसंहार होता है, मारणांतिक किस तरह से मिटता है यहाँ नक्की हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे सब प्रदेश आए और फिर वहां गया, ऐसा नहीं कहा। प्रथम प्रदेश का दंड का उपसंहार होता है,
प्रदेश वापस आ गए।
हाँ?
प्रदेश प्रथम जो
मूल शरीर छोड़कर पहले मोड़ तक गया। प्रथम दंड का उपसंहार यानी पहला वो मूल शरीर से पहले मोड़ तक चले गए। यानी अभी तक सब जगह ऐसी प्ररूपना आती है ना, सारे प्रदेश आ गए मूल शरीर में, फिर एक एक करके चले जाते। अभी
प्रथम दंड तक ही जाएगा।
हाँ, फिर अभी भी दो फैले हैं,
दो कांडक प्रमर प्रदेश,
दो कांडक है, फिर वहां से दूसरे समय में दूसरे मोड़ तक चले जाएंगे।
अच्छा,
सिकुड़ लिया
प्रदेश। ये जो यहाँ से फैले हैं थे ना इसे, तो ये पहला पहले ये
यहाँ तक के पहले से
यहाँ
तक इस कम हो गया।
यहाँ तक पहुंचा तो ये यहाँ पे आ गए।
यानी ये ऊपर फिगर है देखो ना, प्रथम दंड, ये प्रथम मोड़ तक आया, यानी प्रथम दंड का उपसंहार हुआ,
कंडक का उपसंहार,
वो कंडक का उपसंहार हुआ। यानी पहले समय में मूल शरीर से निकलकर पहले मोड़ तक आ गए, अभी भी दूसरा मोड़, दूसरा और तीसरा कंडक फैला हुआ है। हाँ, फैला हुआ है, फिर वहां से वहां तक और वहां से वहां तक, इस तरह से। यहाँ संदृष्टि मूल में देखी, जो ऊपर उन्होंने संदृष्टि बनाई है, साधिक साढ़े सात राजू का प्रमाण इस निम्न प्रकार होता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते। यानी अन्य पद्धति से अन्य आचार्य भी बताते। यहाँ कैसा हुआ, हाइट वाइज वो छह राजू, ऐसा एक राजू, सात राजू और ऐसा ऐसा एक साधिक आधा किया था, छह साढ़े सात राजू। अन्य प्रकार से भी बताते हैं कोई कोई, फिर वो योग्य है कि नहीं वो बाद में बताएंगे। यह था पश्चिम दिशा से मारणांतिक समुद्घात को करके लोक नाली का अंत प्राप्त होने तक पूर्व दिशा में आया, इन्हें आड़ा एक राजू आया, फिर विग्रह करके नीचे छह राजू मात्र जाकर, नीचे छह राजू गया, पुनः विग्रह करके पश्चिम दिशा में आधे राजू प्रमाण जाकर अवधि स्थान नरक में उत्पन्न होने पर उसका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। क्या कहना चाहते हैं?
अच्छा, ये बिल
पूरा ऐसा गया, फिर नीचे गया और फिर अंदर आ गया
आधा राजू।
तो कहते यह घटित नहीं होता क्योंकि उपपाद स्थान का अतिक्रमण करके गमन नहीं होता। क्या कहा? उपपाद स्थान यानी जहाँ जन्मना है उसको कहते उपपाद स्थान, उसका अतिक्रमण करके, यानी अगर उसको सेंटर में उत्पन्न होना होता तो यहाँ पूर्व की ओर एक राजू क्यों जाता, आधा राजू जाकर ही नीचे जाता, अपने उपपाद का अतिक्रमण करके उत्पन्न नहीं होता। अब यही जो ऊर्ध्वगमन मानते हैं तो अपना उपपाद स्थान नीचे है, उसका अतिक्रमण करके ऊपर क्यों जाएगा? लिखा नमूने, उपपाद स्थान का अतिक्रमण करके गमन नहीं होता। ये जो भ्रमणा चलती है ना समाज में या जो विद्वानों के कहने में, किधर लिखा है किधर लिखा है ऐसे पूछते
है, मानने को भी तैयार नहीं है। उद्वगमन होता ही है पहले। अरे मेरा भाभी तो भाई है,
आपको भी मिले क्या ऐसे?
और अभी भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, मेरे भाभी के भाई है।
अरे पंडित कोई कोई नहीं मानते, उनकी तो बात क्या है। हाँ, इस परंपरागत उपदेश से सिद्ध है। अब आगे 23 पेज पर आते हैं। यहाँ उपसंहार कहते हैं, वह इस प्रकार है। उपसंहार कहते हैं, यानी वो तो उसका कैलकुलेशन बताएंगे करके, एक राजू को स्थापित करके साधिक साढ़े सात रूपों से गुणित करके, साधिक साढ़े सात क्योंकि आधिक साधिक आधा दक्षिण की ओर आया, फिर पूर्व पश्चिम एक राजू और नीचे छह राजू, तो साधिक साढ़े सात हो गए। तो कहते एक राजू को साधिक साढ़े सात से गुणा करेंगे, पश्चात तिगुणे उच्छेद से गुणित, उच्छेद है 250, उसको तिगुणा करेंगे तो 750 होते हैं,
500 का 15,
उससे तिगुणे विष्कम्भ, 500 को भी तिगुणा करना 1500 हो जाएगा, के द्वारा गुणित करने पर, यानी 750 इंटू 1500 इंटू वो साढ़े सात राजू गुणित करने पर ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। पूर्व पश्चिम एक राजू और वायव्य दिशा से साधिक आधा राजू नीचे दक्षिण की ओर आया था, साधिक आधा साधिक साढ़े सात, यानी साढ़े सात एक साधिक साढ़े सात जो कुछ साधिक में होगा इंटू 750 इंटू 1500 वो राजू है और ये तो योजन है, वो यथा योग्य उसका जो कुछ होगा उसका इंटू 3 इज इक्वल टू 1500 बराबर छपा नहीं है क्या, यानी एक्चुअली 9 गुना हो जाता है। पहले अगर हम 250 इंटू 500 करेंगे तो उसको 9 गुना करो, एक ही बात है, उसके बदले उन्होंने 3 गुना उसको किया 3 गुना इसको किया और फिर आपस में उसको गुना करना ही करना है, यानी 1500 इंटू 750 करेंगे और उससे ये तो योजन है वो साढ़े सात राजू को गुना करेंगे, यानी उसका एक यूनिट बनाकर फिर उसको गुणा करेंगे। अब कहते हैं तव वदिरित्ता अनुकस्सा, ये उत्कृष्ट किसको होते हैं उसके लिए सारी कंडीशन बताएं, तो जिसको उत्कृष्ट नहीं है वो सारा अनुत्कृष्ट है। अभी उसमें वो हजार यानी वो तो विष्कम्भ छोटा वाला होगा या थोड़ा मारणांतिक करेगा, जो कुछ अनेक पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, अन्य अन्य जीवों के भी ले सकते हैं। तो कहते महामत्स्य के उपर्युक्त उत्कृष्ट क्षेत्र से भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना है, यानी जो सारा जगन है उसको भी अनुत्कृष्ट कहेंगे ना, वो निगोद की है उसको भी अनुत्कृष्ट ही कहेंगे, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा ही अनुत्कृष्ट है। उत्कृष्ट महामत्स्य क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र तद व्यतिरिक्त है, वह अनुत्कृष्ट क्षेत्र वेदना है, वह असंख्यात विकल्प रूप है, क्योंकि एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सॉरी घटते हुए सारे विकल्प उसमें देखना है, तो ये सबसे बड़ी अवगाहना ली उसमें, एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम तीन प्रदेश कम ऐसा निगोद की वो जघन्य अवगाहना तक आ जाना, वो असंख्यात भेद हो गए। शंका, उसके स्वामी की प्ररूपना क्यों नहीं की गई है? समाधान, नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट का स्वामी ही, चूंकि अनुत्कृष्ट का भी स्वामी होता है अतः उसके स्वामित्व की पृथक प्ररूपणा नहीं की गई है। उत्कृष्ट का स्वामी जो बताया है वो अदरवाइज अगर लेंगे इतना लंबा नहीं करेंगे मानान दे के या कुछ कम वेदना हो जाएगी तो उसकी का अनुत्कृष्ट हो सकता है, तथा शेष विकल्प भी इसी से सिद्ध होते हैं, यथा मुख में एक प्रदेश से हीन उत्कृष्ट अवगाहना से संयुक्त पूर्व वैरी देव के संबंध से, यानी वही बाकी सब लिया परंतु वो उसका एक प्रदेश से छोटा ही होगा
एक विकल्प
क्योंकि एक एक प्रदेश से क्या डिफरेंस है ये कैलकुलेट करना है। लोकनाली की वायव्य दिशा में गिरकर वेदना समुद्घात से पूर्व विष्कम्भ उच्छेद की अपेक्षा तिगुणे विष्कम्भ व उच्छेद को प्राप्त तथा मारणांतिक समुद्घात से तीन कांडकों को करके सातवी पृथ्वी को प्राप्त हुआ महामत्स्य अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट क्षेत्र को कहते हैं, अनुत्कृष्ट में से उत्कृष्ट वैसा ही लिया, लंबाई में एक प्रदेश कम वाला, हजार योजन में एक प्रदेश कम प्रदेश कितना सूक्ष्म होता है, है? इस कारण इस अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट क्षेत्र का महामत्स्य ही स्वामी है, यानी अनुत्कृष्टों में उत्कृष्ट। अभी एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम ऐसा करो तो वो महामत्स्य में कितने तो विकल्प उसी में कहने पड़ेंगे। पुनः मुख प्रदेश में दो आकाश प्रदेशों से ही महामत्स्य वेदना समुद्घात से समुद्घात को ये समृद्ध हुआ है, समुद्घात को प्राप्त होकर तीन विग्रह कांडकों को करके मानांतिक समुद्घात से सातवीं पृथ्वी को प्राप्त होता हुआ द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। अनुत्कृष्ट जैसे हम प्रदेशों में वो परमाणु की संख्या में गिनते थे उत्कृष्ट, वैसे यहाँ प्रदेशों में गिनना है, यानी वो लंबाई में उसकी हजार योजन में एक प्रदेश कम, क्योंकि अगर 500 या 250 में कम करते एक कम करते तो तिगुना कम हो जाता उसका। हाँ, फिर तीन आकाश प्रदेशों से हीन मुख वाला महामत्स्य पूर्व विधि से ही मारणांतिक समुद्घात से सातवीं पृथ्वी को प्राप्त होकर तृतीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। ये भी उत्कृष्ट जिसको नहीं वो अनुत्कृष्ट है उसकी बात चल रही है। तो अनुत्कृष्ट में एक एक प्रदेश से हीन बताना है, तो हजार योजन में वो एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम ऐसे अवगाहना वाले जीव लेना है। पेज नंबर 24 पर दूसरी लाइन, मुख में चार आकाश प्रदेशों से हीन महामत्स्य मानातिक समुद्घात से साधिक 7.5 राजू मात्र आयाम से युक्त होता हुआ चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। इस प्रकार इस क्रम से महामत्स्य के मुख प्रदेशों को हीन करके संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण अनुत्कृष्ट क्षेत्र के विकल्पों का उत्पन्न कराना चाहिए। यानी उसी महामत्स्य की अवगाहना ही थोड़ी मुख में कम करते करते इतना कुछ प्रतरांगुल कम कर सकते हैं। शंका, यहाँ का सबसे अंतिम क्षेत्र किसके सदृश होता है? समाधान, इस शंका के उत्तर में कहते हैं यह क्षेत्र सामान्योक्त उत्कृष्ट अवगाहना वाले और वेदना समुद्घात से तिगुणे विष्कम्ब उच्छेद को प्राप्त होकर एक प्रदेश कम 7.5 राजू तक मारणांतिक समुद्घात को करने वाले महामत्स्य के क्षेत्र के सदृश होता है। क्या कहना चाहते हैं? तो ये यहाँ हमने मुख में एक एक प्रदेश कम किया, अब कहते इसके सदृश और कौन सा जगह, वो वहां जहाँ उत्पन्न होना है ना उसके एक प्रदेश कम तक वो गया है, बाकी उसमें जो मारणांतिक का जो दंड है तीसरा दंड उसमें कम करना, तीसरा कांडक एक प्रदेश से कम लेना, अभी वहां से उसको कम करो क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंचे। तो उसमें कितने विकल्प हो सकते हैं एक एक प्रदेश से 7.5 राजू के जितने फिर से भी महामत्स्य के मुख संबंधी विकल्पों का आश्रय करके प्रदेश कम 7.5 राजू तक मारणांतिक समुद्घात को छुड़ाकर संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। यानी एक बार यहाँ मुख प्रदेश में संख्यात प्रतरांगुल तक एक एक प्रदेश कम करो, वैसा ही मारणांतिक रखो, फिर इसके समान वो दूसरा जीव होता है कि वहाँ एक समय कम उसने मारणांतिक किया, एक प्रदेश कम मारणांतिक किया, समय नहीं प्रदेश, फिर इसमें और एक प्रदेश कम के साथ यहाँ मुख में से और
एक एक एक
कम करते जाओ, तो वो किसके सदृश होगा? तो इस प्रकार पूछने पर उत्तर देते हैं कि वह क्षेत्र ओघोक्त यानी ओघ में बताए हुए उत्कृष्ट अवगाहना से संयुक्त और पूर्व विधि के अनुसार दो प्रदेशों से हीन 7.5 राजू तक मानांतिक समुद्घात को छोड़ने वाले महामत्स्य के क्षेत्र के सदृश होता है। एक बार मुख में से प्रदेश कम करना, उसको कम करते करते कहती वो किसके सदृश है? तो कहते वहां दो प्रदेश कम वाला, फिर उसमें से और कम करते जाओ, फिर ये तीन प्रदेश कम मारणांतिक किया, इस तरह से उतना ही क्षेत्र अन्य कैसे कैलकुलेट हो सकता है उसकी बात चल रही है। फिर इस मारणांतिक क्षेत्र के आयाम को अवस्थित करके यानी उसका उतना रखेंगे महामत्स्य के मुख विकल्पों का आश्रय कर संख्यात प्रत्रांगुल मात्र क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। यहाँ संख्यात प्रत्रांगुल तक अलग अलग एक 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 प्रदेश कम कर देना और फिर वहां मारणांतिक में एक प्रदेश घटाना। यहाँ सबसे अंतिम विकल्प तीन प्रदेश कम 7.5 राज्यों तक मारणांतिक समुद्घात को छोड़ने वाले महामत्स्य के क्षेत्र के सदृश होता है। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेश की हीनता के क्रम से मारणांतिक समुद्घात को छुड़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करनी चाहिए। वो कितने उसमें हो जाएगा, एक प्रदेश कितना है, क्योंकि वो तो केवल वो जिसको कहते हैं सुचंगुल के असंख्यात भाग में कितने प्रदेश हो जाते हैं। अंतिम विकल्प यहाँ का अंतिम विकल्प वो तीन कम से अभी उसके आगे और यहाँ प्रत्रांगुल कम करो चार प्रदेश कम, यहाँ और कम करो वो पांच प्रदेश कम, इस तरह से चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हाँ, इसलिए वो शंकाकार पूछते हैं, सातवीं पृथ्वी में मारणांतिक समुद्घात करने वाले सब जीवों के मारणांतिक क्षेत्रों का आयाम समान क्यों नहीं होता। किसी का एक प्रदेश कम बताए, दो प्रदेश कम, तीन प्रदेश, चार प्रदेश कम बताए, तो सबका क्या वहां तक नहीं फैलते हैं प्रदेश, ये पूछना चाहते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात को करके फिर मूल शरीर में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवन संबंधी मारणांतिक क्षेत्रों के आयामों के अनेक विकल्प रूप होने में कोई विरोध नहीं, ये भी उन्होंने स्वीकार किया। मूल शरीर में स्वीकार करके फिर मान फिर मृत्यु, हाँ दोनों पद्धति से बताया। यानी वो पेज नंबर 22 पर था और ये पेज नंबर 25 पर है। यानी सबका समान क्यों नहीं होता कि मूल शरीर में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले, इन्हें दोनों ही के हमें मिल गए दलील, है नहीं प्रूफ। यानी दो पद्धति से वो उसका गमन होता है, फिर एक 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 ही दंड करेगा वो
वेदना समुद्र चालू रहे ने?
पहले में वहां तक
चालू रहेगा,
मूल शरीर में आ गए।
हाँ, अभी समुद्र
कैसे उसको समुद्र कैसे कहेंगे,
नहीं प्रदेश पहले रहेगा और पीछे वो जाएगा तो उसके प्रदेश तो सातवें नरक तक जाएगा ही ना, वेदना समुद्घात करके
एक एक दंड तक उसको कैलकुलेट करना है ना।
नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ कि बाणांतिक यहाँ पे जो दूसरी तरह बताया कि वापस शरीर में
वापस आए, अब वापस आए तो एक समय में कितना फैलेगा, एक दंड तक एक ही दंड होगा ना, एक समय में एक दंड होगा या एक समय में केवल डायरेक्ट दंड भी नहीं होगा, एक समय में उसके फैल कर वहां तक गए इस तरह से जम करके मूल शरीर में आया, मृत्यु हो गई तो अभी वो नारकी कहलाएगा ना, पहले समय में दंड नहीं फैला होगा, मूल में आ गया है। मारणांतिक क्षेत्रों के आयामों के उसका मारणांतिक, वो मारणांतिक जरूर नहीं वहां तक फैले हुए, देखो वहां तक फैले हुए तो उच्चाटन करके जाएंगे भी, और कैसे हो सकता है ना कि उसने बस एक मीटर तक ही फैलाए, एक मीटर तक फैलाए तो मूल में आकर फिर वो वापस सब के सब चले जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। देखो 22 पेज पर हमने दो बातें हुई कि मरण पश्चात प्रथम दंडक का उपसंहार होता है, दंड का उपसंहार होता है, पेज नंबर 22 पर हो गया अपना समय, एक मिनट में बताती हूँ। देखो ये बीच वाला ऊपर का शंका समाधान है ना, उसमें समाधान नारकियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में मिला, प्रथम दंड का उपसंहार हो जाने से, यानी पूरा वहां तक फैले हुए का तो प्रथम दंड का उपसंहार होता है, अब जिसने वहां तक नहीं फैला है वो मूल में आकर फिर वापस चले जाएंगे, ऐसा है उसका अर्थ। यहाँ मरण पश्चात प्रथम दंड का उपसंहार होता है, ऐसा ले मरण पश्चात मारणांतिक में किए हुए, उपसंहार होता है। अब दूसरी बात 25 पेज पर जो आई है, मानांतिक को करके फिर मूल शरीर में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवन संबंधी मानांतिक क्षेत्र का आयाम के अनेक विकल्प होते हैं। उपसंहार ने उसका हिसाब बता रहे, यह उपसंहार कहते हैं, यानी उसका कैलकुलेशन। दूसरी बात एक आई थी 22 पेज पर लास्ट लाइन में, यहाँ किसी ने पूछा था आगे जाकर फिर वापस मुड़कर फिर बीच वाले बिल में उत्पन्न होगा, तो कहते कि उपपाद स्थान का अतिक्रमण करके गमन नहीं होता, यानी ये उद्गमन के लिए भी ये लागू होता है। जहाँ उपपाद होना है उसको लांग कर अन्य जगह जाए और फिर वापस उसमें आए, ऐसा नहीं हो सकता। जो कहते पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऐसा नहीं होगा। और ये अभी जो हमने 25 पेज पर देखा, मूल शरीर में प्रवेश करके मरण करने वाले के मारणांतिक के अनेक विकल्प हो सकते हैं, मारणांतिक के क्षेत्र के, यानी दोनों ही पद्धति से उन्होंने बताया।
तो यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट किए,
अपन दूसरे में एक कंडीशन डाली कि वो अलग अलग प्रमाण तक फैला हुआ था, वहां तक पहुंचा हुआ नहीं था। अब यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो।